मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं जो मेगा गतिशक्ति मास्टर प्लान जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल लॉन्च की है, यानी कि जिसका शुभारंभ किया है, उस पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन पहले कुछ दूसरे जो इम्पोर्टेंट न्यूज हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, बकायदे न्यूज में भी यह बात है कि हमारे राष्ट्रपति जी अभी अरुणाचल प्रदेश जाने वाले हैं। इस पर चीन ने आपत्ति व्यक्त की है। सोच करके देखिए कि चीन ने आपत्ति व्यक्त की है, यह फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। अब जो मैं जो करंट अफेयर्स की भी जो घटनाएं होती हैं, समाचार होते हैं, जो एनालिसिस है, उसे अब थोड़ा सा अलग तरीके से आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। इस बार के प्रश्न पत्र को देखने के बाद जो मुझे रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है, और डेफिनेटली जब जनवरी में मेंस भी हो जाएंगे तब चीजें और भी ज्यादा ठोस रूप में और सही रूप में मैं आप लोगों के सामने रखने में सक्षम हो सकूंगा। खैर, फिलहाल अब आपको चाहिए, देखिए तैयारी आपको इसी तरह से करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार का आप पेपर उठा करके देख लीजिए प्री एग्जामिनेशन का, आप पाएंगे कि केवल किताबों के दम पर आप आंसर नहीं दे सकेंगे, सही विकल्प नहीं ढूंढ सकेंगे। आपको अपने दिमाग को एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि मथना पड़ेगा दिमाग को, और वहीं से वह मक्खन निकल कर आएगा। अरुणाचल प्रदेश जब आप मैप में जाकर के देखेंगे तो वो पता लगा कि चीन के बिल्कुल बॉर्डर में है। चीन बहुत पहले से अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करता रहता है, वो मानता ही नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, इसीलिए उसने हमारे राष्ट्रपति के दौरे का विरोध किया है। स्वाभाविक है कि भारत आउटराइट उसे रिजेक्ट करेगा कि आपको क्या अधिकार है कि आप इस दौरे पर सवाल उठाएं। ये एक बार नहीं, जब भी कुछ ऐसा होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जाएं, हमारे राष्ट्रपति जी जाएं, तो हमेशा चीन इस तरह के प्रश्न खड़े कर देता है, ये आपके दिमाग में दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, प्रधानमंत्री जी जब गतिशक्ति मेगा लॉन्च कर रहे थे, उसी समय उनके अगर आपने उद्बोधन को सुना हो तो उसमें कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। एक बात कही गई थी ह्यूमन राइट्स को लेकर के, मानव अधिकार को लेकर। यह आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ह्यूमन राइट्स, प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। मेंस पर तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है, और इससे पहले पूछा भी गया है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, सच पूछे तो वही क्वेश्चन का बेस भी होता है, जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको लेकर के, इस टॉपिक पर, तो कुछ इसी तरह के होते हैं। दो तरह होते हैं, पहला तो यह कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है, हमारे यहां भी ह्यूमन राइट कमीशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, वैश्विक स्तर पर, तो क्या इसके पास सही में अधिकार है, कुछ ऐसे अधिकार हैं कि ये मानव अधिकार का जो उल्लंघन किया जाता है उस पर कुछ एक्शन ले सके, या कि ये बिना नाखून और बिना दांत का ही शेर है, यानी कि इसके पास सही में इनफैक्ट संवैधानिक या बहुत ज्यादा लीगल वैधानिक अधिकार नहीं है, पहला, तो फिर ये क्या कर लेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जब वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार की बात होती है या राष्ट्रीय स्तर पर भी जब बात होती है तो इसका लोग इस्तेमाल करते हैं कोड़े की तरह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कोड़े की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, वो खासकर जो विकासशील देश हैं या जो अविकसित देश हैं, वहां जब भी कोई पॉलिटिकल संकट खड़ा होगा तो पता कर लगा कि उसको आधार बना करके कह रहे कि यहां के लोगों के मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इस वर्ग का उल्लंघन किया जा रहा है, इस जाति का उल्लंघन किया जा रहा है, इस कम्युनिटी के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, इस पर वो बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बात उठाई है वो यही है कि जब मानव अधिकार के उल्लंघन की बात की जाती है तो वो सबके लिए समान रूप से क्यों नहीं की जाती। जैसे एक वर्ग ऐसा ही है, ऐसा भी आपको भारत में मिलेगा कि जब मान लीजिए कि आतंकवादी गतिविधियां कहीं हो जाती हैं तो आतंकियों के अधिकारों की फिर बात करने लगता है कि इनको इनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। इसी समय में जब हमारे सैनिक मारे जाते हैं, बीएसएफ के जवान मारे जाते हैं, और वो जब बदले में गोली चला देते हैं तो मानव अधिकार की बात आ जाती है, लेकिन जब हमारे जवान मारे जाते हैं तो वहां वो साइलेंट हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी यही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही है कि मानव अधिकार की बात तो की जाती है लेकिन संपूर्णता में उसे नहीं देखा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसे ही रेखांकित किया है। ये टॉपिक आपके अच्छे से तैयार होना चाहिए और इसको लेकर के आज मैं आपको एक दो एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें आपको डेफिनेटली विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ अच्छे उदाहरण भी मिल जाएंगे, और यह भी मिल जाएगा कि स्टैंड क्या होना चाहिए। दोस्तों, आज के अखबारों में आपने एक खबर पढ़ी होगी रोनाल्डो जी को लेकर के, जो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, कि रोनाल्डो अब दुनिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने 10 हैट्रिक लगाई है। 10 हैट्रिक, आइए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, जो हैट्रिक है क्रिकेट में बहुत कॉमन यूज होता है और आप जानते भी होंगे, जब कोई भी बॉलर लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट ले ले तो उसे कहते हैं हैट्रिक। ये हैट है ना, HAT, और इसके बाद ट्रिक अलग है। तो हैट्रिक, हैट टोपी का संबंध इससे इस रूप में है कि जब कोई खिलाड़ी ये सफलता हासिल करता है या अचीव करता है, कह लीजिए, अचीवमेंट कहना चाहिए, सफलता नहीं, जब इस उपलब्धि को प्राप्त करता है तो उसके सिर पर टोपी रख करके, जो क्रिकेट की हैट होती है ना, उस हैट को रख, यदि याद रखिए वो कैप नहीं है, वो हैट है ना, हैट को रख करके सेलिब्रेट किया जाता है, या यूं कह लीजिए कि उसे सम्मानित किया जाता है, तो हैट्रिक। तो बेसिकली है ये क्रिकेट का शब्द, लेकिन दूसरे खेलों में भी यूज होने लगा है, फुटबॉल में भी अब काफी यूज होने लगा है। इसका मतलब यह है कि रोनाल्डो ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही गेम में 10 बार 3-3 गोल किए हैं। ये तो सामान्य सा अर्थ हो गया, लेकिन जिस तरह के प्रश्न अब प्री एग्जामिनेशन में पूछे जाने लगे हैं, जैसे अगर आप भारत रत्न और जो पुरस्कार हमारे यहाँ पद्म विभूषण वगैरह दिए जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को देखिए, या आपके समर ओलंपिक को लेकर के जो प्रश्न पूछा गया इस बार उसको देखिए, तो उसमें नेचर में आपको थोड़ा सा बदलाव दिखाई देगा, है ना। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अब इसी नॉलेज को आप कह लीजिए थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं। ठीक है, हैट्रिक का संबंध तो 3 गोल से हो गया, लेकिन कोई क्या ऐसा वर्ड भी है कि अगर एक खिलाड़ी 2 गोल कर दे तो उसे भी कुछ कहा जाए? जी हां, अगर कोई 2 गोल कर देता है तो उसे कहा जाता है ब्रेस, BRACE, ब्रेस। इसका मतलब भी होता है पेयर, जोड़ा। लेकिन अगर कोई 4 गोल कर दे तो 3 गोल का तो आपको पता हो गया हैट्रिक, और अगर कोई 4 गोल कर दे तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है हाउल, HAUL। सामान्य रूप से इसका मतलब होता है कि जब किसी भी चीज को खींचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़े। मैं इसका अर्थ इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा ये अर्थ दर्ज हो जाएगा तो अगर एग्जामिनेशन में पूछ भी लिया गया तो आप उत्तर दे सकेंगे। देखिए, अब इनको आप लिख करके रट नहीं सकते कि लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, नॉट एट ऑल। अगर आप ध्यान से सुन लेंगे आपके दिमाग में मौजूद रहेगा, अटक जाएगा, जरूरत पड़ने पर निकल कर बाहर आ जाएगा, इतना विश्वास रखिए, और इतना आपको आत्मविश्वास होना भी चाहिए। क्या 5 गोल के लिए भी कोई शब्द है? हालांकि ऐसा बड़ा कम हो पाता है कि कोई इतने बड़े मैच में, इंटरनेशनल मैच में कोई 5 गोल कर सके, लेकिन ठीक है, इसके लिए एक शब्द है ग्लट, GLUT, ग्लट। और ग्लट का मतलब होता है बहुतायत, मतलब आप यूं कह लीजिए कि किसी चीज की डिमांड तो कम है लेकिन सप्लाई खूब हो गई है, खूब हो गई है, खूब हो गई है। तो 5 गोल मार दिया भैया, तो जरूरत से ज्यादा ही गोल मार दिए कुछ, तो आप इसे इस तरह से लिंक कर सकते हैं। तो 5 गोल के लिए है ग्लट। दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 गोल के लिए है ब्रेस, 3 गोल के लिए हैट्रिक आप जानते हैं, 4 गोल के लिए है हॉल, HAUL, और 5 गोल के लिए ग्लट, GLUT। तो दोस्तों, आइए अब मुख्य विषय को देखते हैं। ये जो आज का मुख्य विषय है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों प्री एंड मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब मैं कहता हूं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसका मतलब यह होता है कि इस टॉपिक को आप नोट कर लें, इस पर जब भी आपको कहीं कुछ पढ़ने को मिलता है तो आप उसे ध्यान से पढ़ें, और केवल पढ़ें ही नहीं, पढ़ने से क्या होगा, कुछ दिनों के बाद दिमाग से वो बात गायब हो जाएगी। उसमें से कुछ बिंदु नोट कर लें। मैं नोट्स बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप 2-4-5 पेज का नोट्स बनाएं, किसी भी टॉपिक पर 1-1.5 पेज का नोट्स सफिशियंट होता है। और नोट्स भी क्या बनाना है, आपको केवल पॉइंट नोट करने चाहिए, बस पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मुख्य विषय के तहत मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं तो केवल वही सफिशिएंट है। मैं जो चर्चा करता हूं, मेरा उद्देश्य होता है उसके बेसिक्स को बता देना, फाउंडेशन आपके सामने रख देना। मैं डिटेल पे नहीं जाता कि उस लेक्चर के बारे में मैं आपको पूरी बातें बता दे रहा हूं और अब आपको उसके बारे में कहीं कुछ पढ़ने और समझने की जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। मेरा उद्देश्य सिर्फ बेसिक्स को आपके सामने क्लियर करना होता है, ताकि जब आप इसी टॉपिक को कहीं दूसरी जगह पढ़ें तो बहुत आसानी से आप उसे समझ सकें। और जब कोई बात आप समझ लेते हैं तो मान करके चलिए कि उस पर कोई भी प्रश्न पूछा जाए, चाहे प्री में या मेंस में, डेफिनेटली आप लिख कर आने की स्थिति में होते ही होते हैं। गति शक्ति, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि गति यानी कि स्पीड, उसकी जो शक्ति होती है, तो गति की शक्ति क्या है, अगर आप इसे जोड़कर देखना चाहें तो गति कहां आपको दिखाई दे रही है? सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, ट्रैक पर रेल चलती है, आसमान में प्लेन चलता है, पानी में जहाज चलते हैं, ये सब के सब गति हैं, गतिमान। और कल्पना करके देखिए कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अभी मैंने जिस ट्रांसपोर्ट की बात की है कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। अमेरिका जो आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों में है आर्थिक दृष्टि से, दूसरी दृष्टि से भी, उसका कारण है कि उसने अपने बुनियादी ढांचे को, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, बहुत स्ट्रांग किया है। और ये आर्थिक विकास की सबसे पहली जरूरत होती है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत हो। अगर बुनियादी ढांचा हमारा मजबूत नहीं होगा तो मान करके चलिए कि आर्थिक विकास नहीं हो सकता, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे वो राष्ट्र का हो। तो बेसिकली ये जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, ये एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। और सामान्य रूप से अगर मैनेजमेंट की लैंग्वेज में आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन करने वाला प्लेटफॉर्म है, कोऑर्डिनेशन। इसमें 16 मंत्रालय इन्वॉल्व होंगे, 16 मंत्रालय को कोऑर्डिनेट करेगा। देखिए कोऑर्डिनेशन का क्या, जैसे रेलवे है, रेलवे अपना प्लान बना रहा है, पता लगा कि रोड वाला अपना प्लान बना रहा है, जहाज वाला, बंदरगाह वाला अपना प्लान बना रहा है, सब अपने अपने प्लान बना रहे हैं, राज्य अपने बना रहे हैं, केंद्र अपने बना रहे हैं, पता किसी को एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं कि कौन क्या प्लान बना रहा है, कब प्लान बना रहा है, कितने का प्लान बना रहा है, कहां से किसको जोड़ रहा है, सब अपने अपने में मस्त है। और फिर पता लगा कि आधा पड़ा हुआ है, वो अधूरा पड़ा हुआ है, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है सड़क की, जो पहले 200 करोड़ में बननी थी अब वो 300 करोड़ में बनेगी, तो सारा कुछ हौच-पौच होता है। तो पूरे के पूरे मैनेजमेंट में, याद रखिए, कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। हर मिनिस्ट्री में आपको एक कोऑर्डिनेशन मिलेगा, कोऑर्डिनेशन तारीख उसी मिनिस्ट्री के जो अलग अलग विभाग हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित किया जा सके। तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली समन्वय स्थापित करने वाला प्लेटफॉर्म है। तो इसकी वजह से, इस प्लेटफॉर्म के आ जाने से कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से हो सकेगा, समय पर जो हमारी योजनाएं हैं वो पूरी हो सकेंगी, उनकी लागत सही बैठ सकेगी, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो सकेंगी, एक दूसरे के बारे में सबको सब कुछ पता होगा। तो आप यूं कह लीजिए कि खासकर हमारे बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उठाया गया इसे क्रांतिकारी कदम आप कह सकते हैं। और इसके लिए आपको मालूम है कि 100 लाख करोड़ की बात कही गई थी, लेकिन आज अखबारों में मैंने पढ़ा है 107 लाख करोड़ रुपए की ऐसी परियोजनाएं शुरू हो रही है, 107 लाख करोड़ रुपए। और ये जो बुनियादी ढांचा है ये सबसे ज्यादा आप यूं कह लीजिए कि रोजगार देने वाला क्षेत्र है। आप सोच करके देखिए, कल्पना करके देखिए कि अगर इतना पैसा मार्केट में आएगा तो वस्तुओं की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्रय शक्ति बढ़ जाएगी हमारे लोगों को, क्योंकि उनको रोजगार मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था में एक नए किस्म की जान आ सकती है। तो इसीलिए आप पाएंगे कि इस प्रोग्राम की सराहना सभी संस्थाओं ने, व्यक्तियों ने मुक्त कंठ से की है, और कल के दूरदर्शन पर बहुत विस्तार के साथ इस पर बातचीत भी की गई थी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने डेफिनेटली यह बातचीत सुनी होगी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप ध्यान दें। मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, आप सब ने ऑनलाइन लेक्चर्स की जो प्रशंसा की है, एग्जामिनेशन में आपको इससे जो मदद मिली है दोस्तों, वह पढ़ करके बहुत आत्मसुख प्राप्त हुआ, लगा कि हाँ हम सच में कुछ कर रहे हैं स्पेशली हिंदी वालों के लिए, और साथ ही साथ दूसरी भाषाओं के उनके लिए जो बहुत कम कीमत पर ही चाहते हैं कि उन्हें अच्छी कोचिंग मिल सके। तो आप लोगों के इन शब्दों ने हमारा अपने प्रति आत्मविश्वास बढ़ाया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ईमेल लिखने वाले उनमें से कुछ दोस्तों के मैं नाम लेना चाहूंगा, राजेश कुमार गुप्ता नोएडा उत्तर प्रदेश से, रंजीत सिंह कुशवाहा, निधि मीना, के बी मीना, श्वेता राज, गजानंद विश्नोई बीकानेर राजस्थान से, शशि सिंह, अमित बिस्ट टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड से, और राम काले औरंगाबाद महाराष्ट्र से, आप सबका बहुत बहुत आभार। दोस्तों अब 3 दिनों के बाद मुलाकात होगी दशहरे के लिए, एकेडमी की ओर से मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूर्व में मैं आपको बधाइयां भी दे देता हूं, आप एंजॉय करें। सोमवार को फिर मिलेंगे, बातें करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, नमस्कार।